मैं विकास दुबे हिंदी के काव्य शास्त्र के रीति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने जा रहा हूँ। रीति का कोशगत अर्थ है गमन प्रणाली, जिसे जाया जाए या गतिशील हुआ जाए। अतः मार्ग, पंथ, पद्धति, प्रणाली, शैली आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। रीति संबंधी धारणा और महत्व के विषयों में विद्वानों में मतभेद हैं। वैसे अलंकारिकों ने और रसध्वनि वक्रोक्ति के अनुयायी आचार्यों ने भी रीति की चर्चा की है। रस के अनुयायियों ने इसे उपकत्री रासादी नाम विश्वनाथ कहकर व्यक्त किया है। बाण ने हर्षचरित में इसे साहित्यिक विशेषताओं या शैलियों के रूप में संकेत करते हुए लिखा है, श्लेष प्रायद्युम्नस्य प्रत्येष मात्रकम् उत्प्रेक्षा दक्षिणातेष्यो गौड़स्यावक्षरम् वंडरम्। इस प्रकार उत्तरी पश्चिम में दक्षिणी और पूर्वी प्रदेशों की साहित्यिक शैली की विशेषताओं का उल्लेख रूप में बाण ने जिसका संकेत किया, आगे चलकर वही भामह दंडी आदि आचार्यों के द्वारा रीति या मार्ग के रूप में गृहित किया गया। भामा ने वैदर्भ और गैडीय मार्ग का उल्लेख किया। दंडी ने इनका संबंध विशेषतया गुण से स्थापित किया। इनके विचार से जिसमें दशों गुणों का समावेश हो वह वैदर्भ मार्ग है, और इसके विपरीत जिनमें इन गुणों की शिथिलता हो वह गौड़ीय मार्ग है। उनका काव्यादर्श में कथन है, श्लेषा प्रासाद समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्ति रुदारतमोज कांति शामाध्य इति वैधर्म मार्गस्य प्राण दश गुणा स्मृता येषाम विप्रय प्रयो दृश्यते गौड़धर्मनिम। दंडी ने भी दो ही रीतियों और मार्गों का वर्णन किया है, परंतु वे मार्गों का वर्णन करते हुए भी थे अलंकारवादी ही। ये अलंकारों को काव्य शोभाकारण धर्मान के रूप में देखते हैं। यद्यपि भामह और दंडी की अलंकार संबंधी धारणा अधिक व्यापक और उदार है, वे अलंकारों को काव्य और समग्र सौंदर्य रूप के सौंदर्य तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। रीति को महत्व प्रदान करने वाले तथा इस रीतित्व के वास्तविक मर्मज्ञ आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है और काव्य की आत्मा की खोज की परंपरा डाली। वामन की रीति संबंधी धारणा गुणों पर आधारित है, जिसे उन्होंने विशिष्टता पद रचना रीति विशेषण विशेषो गुणात्मा कहकर व्यक्त किया है। यह गुणात्मा संबंधी विशेषता आगे चलकर गुण की धारणा के साथ कहीं कहीं बदलती हुई भी दिखती है। वामन ने न केवल रीति को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया, वरन रीति की संख्या को बढ़ाया और उसके स्वरूप को अधिक स्पष्ट किया। रीति संबंधी आचार्य वामन के मत का यहाँ का सार यहाँ पर दिया जाता है। वामन के मत से रीति काव्य की आत्मा है। विशिष्ट पद रचना रीति हुई। रीति के तीन प्रकार होते हैं, वैदर्भी, गौड़ीय और पांचाली। वैदर्भी विदर्भादि देशों में प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है या दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है, जो कि संबंध और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़ीय ओज कांतिमयी होती है, इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है, इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है तथा उग्र पदों वाली यह रीति होती है। पांचाली माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीति होती है, यह अघटित भाव शिथिल छाया युक्त मधुर और सुकुमार होती है। कहा गया है, अशिष्ट स्थल भावामता पूर्ण छाया श्रुतम मधुराम सुकुमाराज्य पांचाली कवयो विदु। वामन के विचार से काव्य में प्रथम रीति सर्वगुण संपन्न होने के कारण ग्राह्य है, अन्य अल्प गुणों वाली होने के कारण ग्राह्य नहीं। समास से रहित वैदर्भी रीति शुद्ध वैदर्भी है, क्योंकि इससे गुणों की संपदा विशेष रूप से आस्वाद हो जाती है। इस वैदर्भी रीति की बड़ी प्रशंसा की गई है। यह रीति कुछ ऐसी लोकोक्तर और विलक्षण होती है कि जिसमें तुच्छ सी वस्तु भी विचित्र चमत्कारमय हो जाती है और सहृदयों के लिए तो वह अमृत की वर्षा करती है। इसको प्राप्त कर शब्द की शोभा स्पंदित हो जाती है, जिससे नीरस वस्तु भी सरस लगती है। आचार्य रुद्रट ने रीति की दूसरे आधार की संकल्पना की। उनकी कल्पना रीति को काव्यात्मा मानकर नहीं, उन्होंने उसके चार भेद किए जो गुणों पर आधारित न होकर समास पर आधारित है। उनके विचार से वैदर्भी समास रहित शैली है। पांचाली लघु समास वाली, लाटीय मध्यम समास वाली तथा गौड़ीय दीर्घ समास वाली रीतियां, इस प्रकार चार भेद हुए, वैदर्भी, पांचाली, लाटी और गौड़ी। प्रथम दो माधुरी एवं सुकुमार गुणों से युक्त होने के कारण श्रृंगार, करुण, प्रेयस आदि रसों की व्यंजक तथा अंतिम दो उग्र एवं उदात्त होने के कारण रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों की व्यंजना करने वाली रीतियां हैं। यहाँ पर रीति में वृत्ति की भावना का समावेश होने के कारण रुद्रट ने यह विवेचना किया है। राजशेखर के मतानुसार वैदर्भी समास रहित स्थानानुप्रास और योग वृत्ति से युक्त पांचाली अल्प समास, स्वल्पानुप्रास और उपचार वृत्ति से युक्त तथा गौड़ी दीर्घ समास अनुप्रास युक्त तथा योगवृत्ति परंपरा युक्त होती है। भोज का मत भी लगभग राजशेखर का सा ही है। वक्रोक्ति जीवतम के लेखक आचार्य कुंतक ने रीति की धारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किया है। उन्होंने काव्य शैली या रीति को देश विशेष की परंपरा के रूप में ही देखना उचित नहीं समझा। देशों और प्रदेशों की विभिन्नता और विविधता के आधार पर अनेक रीतियां हो सकती हैं जिनमें काव्यगत विशेषताओं के स्थान पर रूढ़ी पालन की परंपरा का आग्रह हो, उन सभी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक देश में प्रचलित रीति या शैली की विशेषताओं में कुछ दूसरे देश की शैलियां या रीतियां भी मिल सकती हैं। अतः वर्गीकरण की दृष्टि से इस प्रकार के नियम उचित न समझकर उन्होंने शुद्ध गुणों के आधार पर तीन मार्गों या त्रिमार्ग का सिद्धांत निश्चित किया। वक्रोक्ति जीवतम में उन्होंने स्पष्ट किया है, संप्रति तत्र ये मार्ग कवि प्रस्थान हेतु सुकुमार विचित्र मध्यमश्यो भयात्मक। कुंतक ने वामन इस मत की भी आलोचना की है, वैदर्भी जिसका संबंध विदर्भीय कवियों की शैली से है और गौड़ी जिसका संबंध गौड़देशीय कवियों की शैली से है, एक दूसरे से घटकर या बढ़कर समझी जाए। यदि रीति की कसौटी सहृदयों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है तो इस प्रकार की एक ही रीति हो सकती है, अनेक नहीं। उसके भेद देश के आधार पर नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक को उत्तम मानने और दूसरे को मध्यम या अधम ठहराने से यह भाव निकलता है कि उससे वहाँ के सहृदयों को आह्लाद प्राप्त नहीं होता। कुंतक ने कवि स्वभावानुरूप तीन मार्गों को स्वीकार किया, सुकुमार, विचित्र, मध्यम। आधुनिक शब्दावली में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह वर्गीकरण क्रमशः सरस शैली, चमत्कार शैली और समन्वित शैली के समकक्ष है। सुकुमार मार्ग, इसमें प्रतिभा से उद्भूत अद्भुत सहज नैसर्गिक गुणों और विशेषताओं का समावेश रहता है। उसके भीतर जो वैचित्र या अलंकार होते हैं वे अनायास आते हैं। सरसता, भावपूर्णता, स्वाभाविक वर्णन इस मार्ग की विशेषताएं हैं। इसके भीतर शब्दार्थ की योजना भाव और परिस्थिति के अनुरूप होती है। इस प्रकार सुकुमार मार्ग सत्कवियों का मार्ग है जो प्रकृति की नैसर्गिक शोभा, फूल, वन, उपवन, कोकिल, भ्रमर आदि के समान वर्णनों से उत्पन्न रहता है। विचित्र मार्ग, अलंकारिक मार्ग या कला मार्ग, इसमें वर्णन अलंकारों से बोझिल रहता है। यह रत्नाभूषण, जटित कृत्रिम विशेषताओं से युक्त प्रयत्न रचित मार्ग है। यह मार्ग चकाचौंध उत्पन्न करने वाला, चमत्कृत करने वाला मार्ग है। इसमें वर्ण चमत्कार, शब्द चमत्कार, पदावली की ललित झनकार, अर्थ की वक्रता, उक्ति की विचित्रता तथा और आदि विशेषताएं रहती हैं। मध्यम मार्ग, सुकुमार और विचित्र दोनों की विशेषताओं से युक्त यह मार्ग, इसमें भाव और कला की विशेषताएं समान रूप से विद्यमान होती हैं। यह संतुलित मार्ग है। सुकुमारता और विचित्रता काव्य की इन विशेषताओं में से कोई अतिरेक पर नहीं रहती। सहज और कृत्रिम दोनों ही स्वभावों का इस मार्ग में समन्वय होता है। आचार्य कुंतक ने सुकुमार और विचित्र दोनों मार्गों के अंतर्गत चार गुणों की प्रतिष्ठा की है, माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य। प्रथम में ये गुण सहज रूप में और दूसरे में आहार्य रूप में रहते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जब दोनों ही गुण वही हैं, तब निश्चय ही कि कुंतक का मत गुणों पर आश्रित रीति का विवेचन नहीं उपस्थित करता है। उनका रीति भेद सहजता और अलंकृति पर आधारित है। कुंतक ने रीति विवेचन को अधिक स्वाभाविक सहज ग्राह्य पद्धति पर रखा है। ऊपर हमने देखा कि रीति का विवेचन कई आधारों और दृष्टियों से हुआ है। यह आधार है समास गुण, अलंकरण, वैचित्र्य आदि। आनंदवर्धन, मम्मट आदि ने गुणों को रस के उपकारक धर्म रूप में ग्रहण किया और औचित्य से रीति का संबंध जोड़ा तथा रीति के नियामक रूप में वकोत्रोचित्य, वाच्योचित्य, विषयोचित्य और रसोचित्य की चर्चा की। इन तत्वों के आधार पर नीति का रीति का निश्चय होता है। वक्ता या कवि के स्वभाव के अनुसार शैली बनती है। उग्र स्वभाव वाले वक्ता या कवि की उग्र और उदात्त शैली होगी तथा कोमल स्वभाव वाले कवि की वक्ता की शैली सुकुमार और कोमल होगी। इसी प्रकार वाच्य उद्दिष्ट अर्थ विषय और रस के अनुकूल शैली का निर्वाचन होता है। यदि इनकी अवहेलना करके शैली का चुनाव किया गया तो वह प्रभावहीन होती है। शब्द या वर्ण संगठन से संबंधित वृत्तियाँ होती हैं उपनगारिका कोमला और परुषा। प्रथम दो वृत्तियों में क्रमशः मधुर और कोमल वर्णों की आवृत्ति होती है और तृतीय में कठोर वर्णों की। संयुक्ताक्षर का भी प्रयोग तृतीय में होता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में रीतियों के वर्णन में विशेष आधार वर्ण संगठन का ही को ही ग्रहण किया है। साहित्यादर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने चार रीतियों का वर्णन किया जिनमें गुण वर्ण संगठन समास और वृत्ति का आधार है। उनका कथन है माधुर्य व्यंज्य के वर्ण रचना ललितात्म की आवृत्ति रल्प प्रभुत्व वैधर्भी रीति ऋष्यते ओजह प्रकाश कैवर्ण प्रबंधे आडम्बर पुनः समास बहुला गौड़ी वड़े शेषे पुनर्द्व समस्त पंच पशदो बंध पांचालिका मता लाटितूरी रीति वैधर्भी पांचाल्योतरे स्थित क्वचित क्वातृत्व रचना दया। इस प्रकार माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले गुणों वर्णों तथा वर्णों द्वारा वृत्तिहीन या अल्प वृत्ति वाली ललित रचना वैधर्भी है। ओज गुण प्रकाश वर्णों से युक्त उद्दिष्ट रचना जिसमें समासों का बहुत अधिक प्रयोग हो वह गौड़ी रीति है। पांच छह समास युक्त पदों की के बंध वाली रचना पांचाली है और वैधर्भी तथा पांचाली के बीच की रीति लाटी है। रीति विवेचना इन समस्त विवेचनाओं से रीति संबंधी धारणा बहुत स्पष्ट नहीं होती। वास्तव में वामन और कुंतक दो आचार्यों ने रीति के संबंध में स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं परंतु दोनों के दृष्टिकोणों को मिलाकर गंभीरता पूर्वक समन्वित विचार रीति के प्रसंग में अन्य आचार्यों के नहीं है। वामन ने वैधर्भी के समग्र गुणा कहा है। इसका तात्पर्य यदि यह लेते हैं कि यह शैली दोषयुक्त नहीं तब तो ठीक है अन्यथा सभी गुणों का समावेश एक ही शैली में कैसे हो सकता है। माधुर्य और ओज गुण एक शैली में कैसे आ सकते हैं। कांति और सुकुमारता का एक साथ प्रयोग कैसे हो सकता है। इस प्रकार रीति का सिद्धांत बड़ी प्रौढ़ता के साथ निरूपित हो पाया है। कुंतक तथा ने सुकुमार विचित्र और मध्यम मार्ग ये तीन मार्ग प्रस्तुत किए। कवि स्वभाव का आधार ग्रहण करके ये निश्चित किए गए हैं तथा ये गुणों पर आधारित हैं देशगत संकीर्णता से मुक्त हैं। ये बातें सब ठीक हैं पर क्या इनके अतिरिक्त ओजपूर्ण शैली नहीं हो सकती। इसकी व्यंजना इनकी व्याख्याओं में तो है पर नामों में नहीं है। अतः सुकुमार नाम बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह केवल कोमल भावों एवं शब्दावली से युक्त शैली की ही व्यंजना करता है। आवश्यकता है इस बात की थी कि वामन या कुंतक की रीति संबंधी धारणाओं को आगे विकसित किया जाए तब रीति संबंधी रीति सिद्धांत का पूरा विकास हो सकता था पर इसके साथ ही वक्रोक्ति ध्वनि रस आदि सिद्धांत सामने आ गए अतः रीति का पूरा विकास नहीं हो पाया। समस्त आचार्यों की धारणाओं को लेकर हम रीतियों की विशेषताओं को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। वैधर्भी लगभग समस्त गुणों से युक्त समास रहित या अल्प समास वाली मधुर सुकुमार शब्दावली का प्रयोग करने वाली भावों और रसों की व्यंजना करने वाली शरत शैली वैधर्भी रीति कहलाती है। पांचाली स्वल्प समास वाली सुकुमार शब्दावली प्रधान शिथिल पद संगठन वाली शैली पांचाली है। गौड़ी दीर्घ समास वाली ओज और क्रांतिकारी गुणों से युक्त अक्षराडंबर युक्त परुष एवं संयुक्ताक्षरों वाली शैली गौड़ी रीति है। लाटी कोमल पदों वाली उचित समास से युक्त विश्लेषण प्रधान वर्णन वाली शैली लाटी रीति है। उपयुक्त रीति सिद्धांत का वर्णन हमारे आधुनिक विवेचन के लिए बहुत वैज्ञानिक और पूर्ण नहीं है। आज हम शैली पर विचार करते हैं तो उसकी विशेषताएं अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंग से प्रकट की जा सकती हैं। इससे हम विद्वानों के विचारार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शैली या रीति काव्य रचना संबंधी ये वह विशेषता जो कवि की प्रकृति और व्यक्तित्व वर्ण योजन शब्द संगठन अलंकार योजना भाव संपत्ति एवं उक्ति वैचित्र के परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती है। इसके द्वारा हम किसी कवि की रचना को या उस पद्धति की रचना को दूसरे कवि या दूसरी पद्धति की रचनाओं से अलग करके देख सकते हैं। दोनों प्रकार की रचनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर अलग अलग पड़ता है। कोई भी शैली छवि पर पड़े छंद भाव जीवन संबंधी संस्कार के आधार पर बनती है। प्रत्येक कवि की शैली उसकी अपनी निजी कुछ विशेषताओं के होते हुए भी उसमें ऐसी सामान्य विशेषताएं भी रहती हैं जो उस वर्ग के कवियों या लेखकों सभी सभी में पाई जाती है। शैली का निश्चय केवल व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं करता, वरन वर्ण विशेष, वर्ण विषय, पात्र, परिस्थिति, भाव, उद्देश्य आदि के आधार आदि के द्वारा शैली का रूप निश्चित होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नांक की शैलियाँ या काव्य रीतियाँ प्रचलित देखते हैं। सरस शैली, मधुर शैली, ललित शैली, क्लिष्ट या विदग्ध शैली, उदात्त शैली, व्यंग शैली या तीक्ष्ण शैली, इनमें से प्रत्येक की विशेषताओं का सोदाहरण निरूपण यहाँ पर किया जाता है। सरस शैली भाव एवं रस का निरूपण करने वाली, प्रसाद गुण संपन्न, सरल भाषा में भावानुसार शब्दावली का प्रयोग करने वाली, सर्वजन सुगम एवं रमणीय शैली सरस शैली है। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, मैथिली शरण, गुप्त, प्रेमचंद्र आदि की शैली सरस शैली है। जैसे आली रे मोहि को न समझायो, राम राम गमन साँचो, किधो सपनो उर परतीत न आयो, लगे उरहिन इन नयन आगे राम लखन अरुषीता, तदपि न मिटत दाह यह तन को विधि जो भयो विपरीता, दुख न रहे रघुपति बिलोकत तन न रहो बिन देखे, करत न प्राण प्रयाण सुख सुनहुर सखी सुमझो परिरेखे, कौशल्या के विरह वचन सुनेरी सुनि रोई अठिर सब रानी, तुलसीदास रघुवीर विरह की पीर न जाति बखानी। मधुर शैली जिसमें मधुर एवं संगीतमय शब्दों द्वारा उप नागरिका वृत्ति के प्रयोग से सुकुमार और कोमल भावों का वर्णन किया जाता है वह मधुर शैली है। इसमें कर्कश भयानक प्रसंगों का वर्णन नहीं होता है। इस शैली में लिखने वाले कवि जयदेव, विद्यापति, नंददास, देवमती, राम, पद्माकर आदि कवि, उदाहरण कुंदन को रंग फीको, लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, आखिन में अलसन चितौनों में संमंजु बिलासन की मधुराई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मति राम लखे अखियान लुनाई, ज्यों ज्यों निराह निहारी नेरे, दैन नैनिन त्यों त्यों खरी निकसै निकाय। ललित शैली जिस शैली में शब्दों का कलात्मक प्रयोग होता है, जिसमें कल्पना की रंगीनी, वर्णन की सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता रहती है, उक्ति चमत्कार एवं अलंकारिकता भी जिसमें होती है, वह ललित शैली है। इस शैली के कवि कालिदास, श्रीहरि, श्रीहर्ष, बिहारी, पद्माकर, रत्ना रत्नाकर, प्रसाद, महादेवी आदि उदाहरण है। अंग अंग नग जगमग दीप सर सिकासी देह, दिया बुढ़ाए हु रहे बड़ो उजेरुगे। क्लिष्ट या विदग्ध शैली जिस शैली में शब्दों का सांकेतिक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक प्रयोग हो, गूढ़ अर्थ या क्लिष्ट कल्पना की जिसमें प्रचुरता हो, जिसका भाव बिना व्याख्या या टीका के स्पष्ट ना हो, वह क्लिष्ट या विदग्ध शैली है। इस शैली की भाव भारवी, माघ, केशवदास, सेनापति, निराला आदि है। उदाहरण तेना नगर नाक नागरी प्रतिपद हंसकहीन, जल जहार शोभत न जहाँ प्रकट भयो पयोधर पीन, कौन तम के पार अखिल पल के स्रोत जल नग गगन घन घन धार, गंध व्याकुल कुल उर्सर लहस चर कर कमल मुख पर हर्ष अरि उर हस स्पर्श सर गूंज बारंबार। उदात्त शैली उज गुण संपन्नता वीरता उत्साह भय आदि भावों की प्रेरक दीर्घ मात्रा युक्त दीर्घ श्वास प्रभावी पदों वाली कहीं कहीं संयुक्ताक्षर युक्त उद्देचक उत्तेजक शैली उदात्त शैली कहलाती है। बाण भट्ट नायक, चंद सेनापति, भूषण, चंद्रशेखर, निराला, दिनकर आदि इसी शैली के लेखक हैं। उदाहरण बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नाग नग बहराने ग्राम नगर पुराने शूनी, बाजन निशाने शिवराज जूस जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, दल के दरारे हु तो कमठ करारे फूटे, केरा केशे पात बिहराने फन शेष के, दिल ले दलन दबाए करी शिव सरजा समरथ, लूट लियो सूरति शहर बक्क कारी अतिडंक, बक्कर करी अतिडंक करी अंतिडक शंकरी खलु, सोच चक्कति भड़ोचल्य विमोचक जलु, तुठई मन कठई सोय रठल्य सिद्ध दिशि भद्दभु रहे रद्दियल्य। व्यंग्य शैली किसी बात को इस ढंग से कहना कि उसमें एक तीखा प्रभाव व्यक्त हो, वक्रोक्ति या व्यंग शैली के भीतर है। इसमें बात का वाच्यार्थ प्रधान न होकर उससे निकलने वाला व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। समय और अवसर के अनुरूप इस शैली का प्रयोग बहुत से कवियों ने किया है। सूर्य सागर का भ्रमर गीत प्रसंग, रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम तथा अंगद रावण संवाद, बिहारी के कुछ दोहे सेनापति के कवित्व, दीनदयालगिरी के छंद, बेनी के कवित्व, निराला के छंद आदि में इस शैली के उदाहरण मिलते हैं। जैसे तुलसी पावस के समय धरी कोकिले मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन, कर ले सूघी लागाई मुख मीठू कहत सराही, रे गधि रे गंधिमती अंध तू अतर दिखावत कही, मरत प्यास पिंजरा परे ओ सुख समय के फेर, आदर दे दे बोलेति बायस बलही के बेर। ऊपर के विवेचन में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि आज यदि हम शैली के रूप में रीति को ग्रहण करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का उसका वर्गीकरण हो सकता है। साहित्य की शैलियों का विचार पाश्चात्य विद्वानों ने भी किया है। शैली के प्रसंग में अरिस्टोटल की काव्य शैली लिटरेरी स्टाइल, वाद शैली कंट्रोवर्शियल स्टाइल, डेमेट्रियस की सरस शैली प्लेन स्टाइल, उदात्त शैली स्टेटली स्टाइल, ललित शैली पॉलिश्ड स्टाइल, तीव्र शैली पावरफुल स्टाइल तथा इनके विकृत रूप में स्थिर शिथिल शैली फॉरजिड स्टाइल, कृत्रिम शैली अफेक्टेड स्टाइल, नीरस शैली अरिड स्टाइल, अरोचक शैली डिसएग्रीबल स्टाइल आदि भेद प्रसिद्ध हुए हैं। इनके अतिरिक्त देश के आधार पर क्विंटिलियन के एटिक, एशियाटिक और रेडियन शैलियों, विंचेस्टर की विचार और कल्पना की स्पष्टता पर आधारित शैलियां भी शैली के प्रसंग में महत्वपूर्ण हैं। इनमें से लगभग सभी शैलियों का समावेश उपरोक्त विवेचन के भीतर आ जाता है, अतएव इनके अधिक विवरण की अपेक्षा नहीं। गुण। रीति के प्रसंग में गुणों का वर्णन करना उपेक्षित है। गुणों के संबंध में भी आचार्यों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। भरत मुनि भावगत विशेषताओं के रूप में इन्हें स्वीकार करते हैं। उन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेषा प्रसाद समता समदही माधुर्य मोज पद सौकुमार्यम अर्थस्य च व्यक्ति रुद्राद्रता च कांतिश्च काव्यस्य गुणादशयत। आचार्य दंडी ने भी इन्हीं गुणों को माना है। वे गुणों को मार्ग के आधार रूप में ग्रहण करते हैं। वामन भी रीति जो काव्य की आत्मा है वह गुण के आधार आधारित है, यह बात स्थापित करते हैं। परंतु दंडी और वामन की गुण संबंधी धारणाओं के अंतर हैं में अंतर है। दंडी काव्य शोभा का हेतु अलंकार मानते हैं, ना कि गुण। इस प्रकार वामन के विचार से गुण का अधिक महत्व है। अलंकार गुण द्वारा संपन्न काव्य शोभा को बढ़ाने वाले हैं, शोभा के मूल हेतु नहीं है। पद रचना के उपरोक्त 10 गुणों को वे स्वीकार करते हैं। वामन के विचार से पद रचना में संश्लिष्ट व संगठन में ओज शिथिल, संगठन में प्रसाद अनेक अर्थ, जहाँ एक पद से लगे वहाँ श्लेष शैली की एक समानता, समता चढ़ाव उतार का क्रम समाधि समास रहित, पद प्रयोग माधुर्य कठोरता का कठोरता के अभाव में सौकुमार, जहाँ वर्ण नृत्य न करते हो वहाँ उदारता, जहाँ स्पष्टता वहाँ अर्थ व्यक्ति, नव्यता और चमक में कांति गुणों की उपस्थिति मानी जाती है। यह व्याख्या पद रचना की दृष्टि से है, अर्थ की दृष्टि से भी फिर अलग व्याख्या वमन ने की है। इसके अनुसार अर्थ की प्रौढ़ता ओज अनेक विशेषताओं का संगठन, श्लेष विषमता का अभाव समता, अर्थ की विशेषता समाधि उक्ति वैचित्र माधुर्य परुषता का अभाव सौकुमार्य ग्रामत्व की हीनता उदारता स्पष्टार्थता अर्थ व्यक्ति तथा रस की दीप्ति कांति है। आचार्य आनंदवर्धन का मत है कि गुण काव्य के धर्म है, काव्यांग अर्थात शब्द अर्थ के आदि के नहीं। जैसा कि उनका कथन है, तमर्थ मलवाबंते ये ते गुणा स्मृता, इस प्रकार गुण अंगी का धर्म माना गया है, अंग का धर्म नहीं। वामन के मत का यहाँ पर और स्पष्टीकरण हो जाता है, परंतु अंतर यह है कि वामन काव्य की आत्मा रीति मानते हैं, अतः ये गुण रीति के धर्म है और काव्य शोभा के शोभा को करने वाले, जबकि आनंदवर्धन अभिनव गुप्त मम्मट आदि आचार्यों के मत में से ये गुण रस के धर्म है, क्योंकि रस अंगी मम्मट का स्पष्ट कथन है। ये रसस्योगिनो धर्मा सौदार्य इवात्मना उत्कर्ष हिस्त्यो इस चलस्त्यो गुणा। ममट्टाचार्य ने तथा अन्य ध्वनिवादी आचार्यों ने 10 गुण नहीं माने, वे केवल 3 गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद मानते हैं। ये गुण राष्ट्राश्वाद के समय सामाजिक की 3 अवस्थाओं के साथ सामंजस्य द्वारा निश्चित किए गए हैं। ये 3 अवस्थाएं द्रुति, दीप्ति और प्रसन्नता। इस प्रकार माधुर्य श्रृंगार आदि का ओज वीर सौहार्द रौद्र का तथा प्रसादी सभी रसों का उपकरण है। श्रृंगार परम मधुर परमार हृदयमय रस है, पर अतः माधुर्य का उससे संबंध स्वाभाविक ही है। माधुर्य का संबंध चित्त को द्रवित करने से है, अतः विप्लम्भ और करुण रसों में उसकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। ओज का संबंध चित्त के उत्तेजित हो जाने या दीप्त हो जाने से है। ओज गुण की दृष्टि से वीर से अधिक विभत्स और उससे अधिक रौद्र रस प्रचंड माना गया है। प्रसाद गुण प्रसन्नता और व्यापकता का द्योतक है। 10 गुणों में कुछ गुण तो इतने तो इन्हीं 3 के भीतर आ जाते हैं और शेष गुण ना होकर दोषाभाव के रूप में आते हैं। अतः मम्माटादि ध्वनाचार्यों के द्वारा केवल 3 ही गुणों माने गए हैं। लगभग यही मत आचार्य विश्वनाथ ने भी स्वीकार किया है। रसों की परिभाषा में उनकी इसी प्रकार की है, जैसे रसाशंग में तवस्तमा धर्मा सौहार्द्रता गुणा माधुर्य में वो जो प्रसाद इति तेत्रता। ये गुण अंगी के धर्म के रूप में है। माधुर्य चित्त को द्रवित करने वाले भाव से युक्त है। संभोग करुण विप्रलम्भ और शांत में यह क्रमशः अधिक प्रकर्ष युक्त होता है। इसमें समासहीनता या अल्प समासता तथा वर्गों के अंतिम वर्णों तथा लघुमात्रिक वर्णों का प्रयोग होता है। यह मधुर रचना है तथा यथा लता कुंजम गुंजमावदक पुलिंजम चपलयन समलिंगता द्रुत रमनम प्रबलयन मरुन मंद मंद दलित मरविंदन तरलन रजोविंद्रम विंदु कटिकन मकरंद दिश दिश। ओज चित्त का विस्तारक एवं दीप्तिकारक विभत्स और रौत्र में यह क्रमशः प्रकर्ष प्राप्त करता है। संयुक्त वर्ण टवर्ग द्वित रेफ आदि का अधिक प्रयोग तथा समास युक्त पदावली रहती है, यथा जय चमुंड भावते सुर सुरखि खंडनी जय सुरक्ति जय रक्त बीज बिंडाल बिहंडनी जय निशंभ सुभिधलनी भनिभूषण जय जय भननी सरजा श्यामथ शिवराज कह देह विजय जग जग जननी। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है। यह समस्त रसों में और रचनाओं में रहता है। इसमें आए शब्द सुनते ही अर्थ के द्योतक होते हैं, यथा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी देखे भूप महारण धीरा मानव वीर रस धरे शरीरा पूर्वासीन देखे देखे दो भ्राता नरभूषण लोचन सुखदाता। इस प्रकार ध्वनि और रस सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हो जाने पर माधुर्य ओज और प्रसाद इन्हीं 3 गुणों को आचार्यों ने मान्य ठहराया है।